नमस्कार साथियों, बैतूल मोबाइल वाणी से चारुमति वंजारे और आठनेर क्षेत्र के विकास खंड, इसमें हम लोग गांव धनोरा में पहुंचे हैं। और इस ग्राम में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और इस प्लांट पे हमारे बीच में श्री वराठे जी है, जिनको 10 वर्षों का अनुभव है और ये अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पे जो कार्य देख रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन्हीं के साथ हमारे साथ बैठे हैं श्री पुरुषोत्तम जी सातपुते, जो लैब टेक्नीशियन हैं, और साथ में श्री साबले जी भी हमारे साथ बैठे हैं। इनसे हम लोग यहाँ बात करने आए हैं कि जल की शुद्धता कैसी होती है और उसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका परिचय लेंगे। वराठे जी, सातपुते जी और साबले जी अपना परिचय देंगे, उसके बाद हमारे जल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न रहेंगे जो ये हमारे साथ साझा करेंगे। तो श्री वराठे जी अपना परिचय दें।
हेलो दोस्तों, मैं विकास वराठे इस योजना में प्रोजेक्ट इंचार्ज के पद पे यहाँ कार्यरत हूँ और मेरे साथ हैं सातपुते जी। सातपुते जी,
गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं इस पद में लेबर इंचार्ज के पद पे कार्यरत हूँ, तो मैं वाटर की जो क्वालिटी है उसके बारे में सारी डिटेल आपके साथ साझा करूँगा।
हेलो दोस्तों, मैं इसी ग्राम से धनोरा से ईश्वरदास साबले पाइपलाइन सुपरवाइजर हूँ और 20 गाँव की मॉनिटरिंग करता हूँ।
तो हमने इनका परिचय जाना। अब सबसे पहले तो हम वराठे जी से ये जानना चाहेंगे कि ग्राम धनोरा और इससे जुड़े हुए जितने भी गांव हैं जिनको आप जल सप्लाई करते हो, तो इन गांवों में माननीय मोदी जी के द्वारा चलाई गई एक योजना, नल जल योजना, जो ये उनका सपना था और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी उनके लिए कि हमारे प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक घर में जल पहुंचे और वो भी शुद्ध, तो इस गांव में और इससे जुड़े हुए अन्य गांव में इसकी क्या स्थिति है, वराठे जी से हम जानेंगे।
जैसा कि मैडम ने बताया कि नल जल योजना मोदी जी, माननीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट को हर घर नल पहुंचा के देना है, जिससे कि शुद्ध जल अवेलेबल हो सके। ठीक है, पहले तो हम समझेंगे कि ये नल जल योजना होती क्या है। पहले क्या होता था कि पहले इंडिविजुअल योजनाएं चलती थी गाँव में। इंडिविजुअल मतलब सिंगल योजनाएं, कोई भी ट्यूबवेल या कुआं सेलेक्ट करके वहां से गाँव को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि वाटर लेवल डाउन होते जा रहा है धीरे 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 धीरे, जिससे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल कुआं हो या ट्यूबवेल हो, जो कि सूखते चले जाते हैं, जिससे गांव में नल जल योजना बंद हो जाती है ना। तो इस समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी योजना निकाली है, जिसमें हम लोग कोई भी एक परमानेंट सोर्स सेलेक्ट करते हैं और परमानेंट सोर्स से जल मिल सके, जो कि नदी हो सकता है और तालाब भी हो सकता है। और जो जल हम परमानेंट सोर्स से ले रहे हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक ट्रीटमेंट यूनिट लगाती है, जिसको कि फिल्टर प्लांट करते हैं और फिल्टर प्लांट कहते हैं। और फिल्टर प्लांट से हम वाटर ट्रीट करके गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब गांव में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और टंकियां बनाई जाती है।
सर, ये जो पानी आप भिजवा रहे हैं तो इतना पानी अवेलेबल होता है क्या कि जो 20 गांव में और पूरे वर्ष भर ये पानी वहां तक पहुंच पाए?
हाँ जी मैडम, हम जो सोर्स है उसी के अनुसार हम लोग सोर्स सेलेक्ट करते कि उन 20 गांवों को पर्याप्त रूप से पानी अवेलेबल हो सकते। अभी बात जैसे 20 गांव की, ऐसी ही बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं जो कि 1000 गांव, 2000 गांव की, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाओं का भी संचालन प्रगतिरत है और कुछ योजनाएं कंप्लीट भी हो चुकी है। तो ये योजना तो सिर्फ 20 गांव के लिए है।
बीस गांव में जो आपकी योजनाएं चल रही है, तो क्या इन 20 गांव में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12th पास हो चुके हैं और उनको यहां पे रोजगार मिल सकता हो, और उन्हें ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे उनको यहां पे जॉब मिल सके, और इसमें आगे क्या सोर्स है जॉब के, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
मैम, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक्चुअल में जो वाटर सप्लाई स्कीम है ये कॉम्बिनेशन है मल्टीपल ब्रांचों का, जैसे कि हम बात करें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, अकाउंट, और जैसे अगर किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया तो उसके लिए भी साइट सुपरवाइजर की पोस्ट होती है। अब जैसे हम सिविल की बात कर ले तो ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, इंटेकवेल हो गया, टंकी है, ये हमारे सिविल स्ट्रक्चर है। इसके साथ में मैकेनिकल के सारे सारी की सारी पंपिंग मशीनरी है और इलेक्ट्रिकल आइटम में सारा का सारा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होता है। तो हमारे यहाँ पे तो हर तरह की ब्रांचेस के लिए रोजगार अवेलेबल है, बस इतना सा है कि थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस हो तो वो यहाँ आके हमारे पास में एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं।
तो क्या आप ऐसे 12th पास हुए बच्चों में से कोई सीखना चाहे अगर लैब टेक्नीशियन का काम या जल को शुद्ध कैसे करें, तो क्या आप उन लोगों को सिखाना चालू कर सकते हैं या सिखा रहे हैं, या ऐसे कोई बच्चे हैं क्या आपके पास जो अभी वर्तमान में उसे सीख रहे हैं?
बहुत अच्छी बात पूछी मैडम आपने। अभी करेंट में हम MMSKY स्कीम के अंतर्गत मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत हम 3 बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एक ITI वाला बंदा है। इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति या बच्चा यहाँ आके सीखना चाहता तो हम उसको भी सिखा सकते हैं, जिसके माध्यम से उसको आने वाले समय में अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकता है।
तो आप जो इन्हें सिखाने का काम करते हैं तो इसका अलग से कोई चार्ज लेते हैं या निःशुल्क होता है या शासन द्वारा करवाया जा रहा है?
मैडम ये 3 बच्चों को जो हम प्रशिक्षण दे रहे हैं ये तो शासन के द्वारा, इसमें 25% एजेंसी दे रही है और 75% गवर्नमेंट दे रही है, तो ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल सीखना चाहता है तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, वो आके यहाँ सीख सकता है।
अच्छा मराठे जी, एक बात और बताइए कि यहाँ पे अभी आपके प्लांट पे कितने वर्कर हैं और कितने वर्कर गांव से जुड़े, यहीं के गांव के हैं, और कितने बाहर से आते हैं?
मैम अभी हमारे पास में वर्तमान में 18 से 20 वर्कर कार्यरत हैं, जिसमें कि 50% जो कर्मचारी है इसी ग्राम के हैं और 50% जो कर्मचारी है धनोरा के आसपास के हैं।
अच्छा, तो हमें मराठे जी ने बताया कि बच्चे 12th के बाद इस जॉब में आने के लिए क्या कोर्स कर सकते हैं, और यहाँ पे इन्हें जो बच्चों को सिखाया जा रहा है ये भी एक बहुत बढ़िया काम है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे हमारे बीच में बैठे हैं श्री सातपुते जी, हम इनसे जानेंगे कि जो वाटर ट्रीटमेंट होता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, आप कौन कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके माध्यम से वाटर को शुद्ध करते हो?
नमस्कार दोस्तों, अब बात करते हैं जो वाटर ट्रीटमेंट में जो टेस्ट लगते हैं उसके बारे में। तो इसमें सर्वप्रथम क्या होता है, सबसे पहले टेस्ट लगाया जाता है pH टेस्ट। pH टेस्ट जो होता है वो वाटर की जो नेचर है उसको बताया था, यानी वाटर एसिडिक है या अल्काइन नेचर है। जो pH रेंज है, जो pH डिपार्टमेंट की तरफ से हमें परमिसिबल लिमिट है, वो है 6.5 से लेकर के 8.5 के बीच में हमें pH मेंटेन करना होता है वाटर का।
अच्छा
सुत्तम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अपन वाटर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, है ना, उसकी प्रोसीजर एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझा दीजिए जिससे कि आम लोगों को जानकारी हो जाए कि भाई वाटर ट्रीटमेंट करते कैसे, है ना।
देखिए वाटर ट्रीटमेंट की जो स्टेजेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट स्टेज होती है जो ताप्ती रिवर है पारस डोपर, वहां पर इंटेक वेल बना है, वहां से इंटेक वेल से जो रॉ वाटर पंप किया जाता है, जो धनोरा में फिल्टर प्लांट बना है वहां से। तो यहाँ पे क्या है, फिल्टर प्लांट बना है, यहाँ पर सबसे पहले जो रॉ वाटर है वो एरेटर पर आता है, एरेटर के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है एलम डोजिंग और क्लोरीन की डोजिंग करना।
सर ये एलम के बारे में थोड़ी जानकारी?
हाँ, एलम डोजिंग मतलब इसलिए की जाती है जैसे जो टर्बिडिटी वाटर की, जो धूल मिट्टी के कणों के कारण जो वाटर में रॉ वाटर में टर्बिडिटी क्रिएट होती है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कम करने के लिए एलम डोजिंग की जाती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है, वहां से वो जो जल है हमारा रॉ वाटर है वो क्लेरिफायर में जाता है। तो क्लेरिफायर में क्या होता है कि जो रॉ वाटर में हमने एलम की डोजिंग की है, वहाँ पे जो कोगुलेंट के तौर पे जो एलम की डोजिंग की थी, तो वहाँ पे फ्लॉक्स का निर्माण होता है। तो फ्लॉक्स निर्माण होकर वहाँ पर क्लेरिफायर में सेटल डाउन हो जाते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज में वाटर जाता है तो फिल्टर बेड में जाता है। और फिल्टर बेड पे क्या होता है, जो नॉर्मली जैसे नेचुरल जैसे अपने जो फिल्टर करते हैं, जैसे अपन टी वगैरह कैसे फिल्टर करते हैं, तो जैसे चलनी में रह जाती है, उसी प्रकार से जो और भी पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं, वो वहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। और उसके बाद फाइनली जो है ट्रीटमेंट वाटर पंप हाउस में चला जाता है, और वहाँ से सारे गाँव में सप्लाई होती है।
पंप हाउस में देने के पहले हम लोग केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, अच्छा, तो उसके बारे में समझाएं।
हाँ, तो इसमें जो होता है, जो गांव में सप्लाई करने से पहले हमें क्लोरीन की डोजिंग भी करना होता है। तो क्लोरीन डोज के लिए, तो जो क्लोरीन की डोजिंग होती है वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन फ्री करने के लिए होती है। तो इसमें जो बैक्टीरिया के टेस्ट होते हैं जो हमारे यहाँ, वो होते हैं क्वालिफॉर्म बैक्टीरिया और इकोलाई। ये दो बैक्टीरिया, मतलब क्वालिफॉर्म तो एक ग्रुप ही है बैक्टीरिया का, एक कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया नहीं है। तो ये बैक्टीरियल फ्री करने के लिए क्लोरीन डोजिंग दी जाती है।
अच्छा सर, ये बताइए कि जो आप क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं, तो ऐसा कई लोग कहते हैं और ऐसी भ्रांतियां भी फैली हुई है कि क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग जब उसमें करते हैं और ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा हमारे इसमें ज़्यादा हो जाती है जब जल में, तो हमारे दांतों में खराबी हो जाती है, बहुत सी बीमारियाँ हो जाती है, बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो क्या ये वास्तव में सही है या ये सिर्फ भ्रांति है?
हाँ, इस बारे में मैं भी बताना चाहता हूँ। जैसे मैं कई गांव में जाता हूँ तो लोगों में क्या है, बिना अवेयरनेस के कारण, अवेयरनेस की कमी होने के कारण उनमें कई भ्रांतियाँ हैं जिसको मैं सुनता हूँ। तो उसमें क्या है, वो लोग बातें करते हैं कि जैसे जो क्लोरीन है उससे हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारी स्किन को कोई नुकसान तो नहीं होगा। ऐसी सारी जो उनमें मिथ्या है वो मैं देखता हूँ कई बार, लेकिन मैं पूरी तरीके से उनको मतलब समझाता हूँ कि इससे कोई नुकसान नहीं है। जो क्लोरीन की डोजिंग होती है वो जो परमिसिबल लिमिट है, जिससे कि जितनी लिमिट है उसके अंडर देने से क्या है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई क्लोरीन डोज, क्लोरीन के अगर इनहेल कर लेंगे डायरेक्ट तो फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन अपन जब वाटर में सॉल्यूबल करके उसको देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। और इसके जो कंसंट्रेशन का ध्यान हम बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर पॉइंट पर जाके जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो भी टेस्ट करते हैं कि कंसंट्रेशन कहीं अधिक तो नहीं हो रहा है। तो इससे लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि क्लोरीनेटेड वाटर है तो वो नुकसान करेगा, ऐसा कोई इच्छा नहीं है, ये तो सब मिथ्या है।
अच्छा सर, ये बताइए कि शुद्ध जल पीने से क्या फायदे होंगे और अशुद्ध जल से कौन सी बीमारियां हो सकती है?
देखिए, वाटर तो हमारे लिए अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर तो वाटर बहुत ही जरूरी होती है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, फिर वो ह्यूमन हो या और भी कोई जीव हो या प्लांट्स वगैरह हो, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। बिना वाटर के जो हमारी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते अपन। तो जो वाटर, अगर अपन रॉ वाटर का डेली यूज करते हैं, अगर जो कंटामिनेटेड वाटर है वो डेली ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं, तो उससे कई बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर मान के चलो कोई एक बहुत ही यानी खतरनाक बीमारी है जो कोलेरा, जिसको हैजा बोलते हैं, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि लोगों में उतनी अवेयर नहीं थी और साइंस भी इतना डेवलप नहीं था, तो उस टाइम इस बीमारी से कई लोग, मतलब कई पर्टिकुलर एरिया के लोगों की मौत तक हो जाती थी। लेकिन अभी अवेयरनेस हो गया है, तो अभी क्या अपन जो ट्रीटमेंट वाटर पीने से ये इन बीमारी से बचा जा सकता है। और इसमें मतलब और भी जैसे बीमारियाँ टाइफाइड वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन अभी अगर अपन ट्रीटमेंट वाटर पीते हैं पर्टिकुलर, तो कोई ऐसी कोई बीमारी होने से हम बच सकते हैं। लेकिन कई गाँव में मैं जाता हूँ तो वो लोग क्या अभी भी जैसे क्लोरीनेटेड वाटर या ट्रीटमेंट वाटर है इसको अवॉइड करके उनके जो लोकल के सोर्स है, जैसे कुएं हो गए या कोई हैंडपम्प हो गए, तो उसका पानी पीते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि फिर उसमें अब वो पानी तो टेस्टेड नहीं है, उसमें क्या कितना कंसंट्रेशन आयंस वगैरह का, ये कुछ मेंटेन नहीं रहता है। तो इसलिए मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर भी उनको अगर ट्रीटेड वाटर मिलता है तो उसी को प्रेफरेंस देना है, बाकी किसी और लोकल सोर्स का नहीं पीना। पहले के ज़माने में क्या था कि इतना वाटर पोल्यूटेड नहीं था, तो उसके कारण क्या था कि वो वाटर में कंटामिनेशन नहीं रहता था। लेकिन आजकल उसको अवॉइड करना चाहिए, अगर अपने को ट्रीटमेंट वाटर अवेलेबल है तो उसी का यूज करना चाहिए।
अच्छा, हमारे बीच में साबले जी भी है और ये जब गांव में जाते हैं तो हम इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि पहले घरों में जब नल नहीं थे, घर में जब जल नहीं पहुंच रहा था, और आज मोदी जी के माध्यम से प्रत्येक घर में जल पहुंच रहा है नल के माध्यम से, तो गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, वो अपने काम को कैसे मैनेज कर रहे हैं और पहले कैसे मैनेज करते थे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
देखिए मैम, हम 20 गांव में जाते हैं यहाँ से। फर्स्ट गांव तो हमारा धनोरी पड़ता है, सेकंड गांव जावरा, तो ऐसे पूरे 20 गांव है। हम जाते तो बहुत उनको सुख चैन मिलता है, जाते तो पहले पानी पिलाते कि बहुत अच्छा पुण्य का काम किया तुमने कि ये। पहले हम 4 बजे उठते थे, कुएं पे जाते थे, हैंडपंप में जाते थे, और बहुत सारा शारीरिक श्रम करना पड़ता था। आज इस श्रम से हम बिल्कुल मुक्त हो गए। आज जानवरों को पानी पिला रहे तो यहीं घर से ही पिला रहे, और सारी चीज़ें हमारी जो टाइम वेस्ट होता था वो हम हमारे गृह कार्य में ले लेते, इसलिए सारी चीज़ें संतुष्ट है। एक समय वो भी देखा बोले उनके खटिया पे नहाकर वो पानी स्टोर करते थे, उससे हम सराई कुताई करते, पर आज पूरे दूर पानी पानी हो गया पर्याप्त, इसलिए सारे लोग खुश है। और मोदी जी की यह महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल, ये बहुत सफल योजना है और ये एमपी की पहली योजना है जो हमारे धनोरा फिल्टर प्लांट पे सफल संचालित हो रही है। आज 9 साल हो गए, चालू है निरंतर।
अच्छा, आपके जो घर में बुजुर्ग होंगे तो उन्होंने भी बताया होगा कि पहले तो हमारे यहाँ जो पानी आता था सीधे कुएं से लेते थे और पीते थे, नल का लेते, नदी का लेते थे और पीते थे, तो आज वर्तमान में, और उस समय भी पानी की गुणवत्ता थी, लोग कहते थे हम स्वस्थ हैं, और आज हम गुणवत्तापूर्ण जल पीने के बाद भी अस्वस्थ महसूस करते हैं, तो ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी हमको कि हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे गाँव में लाकर लगाना पड़ा?
देखिए मैडम, पहले क्या लोग अज्ञानतावश पढ़ाई लिखाई मतलब जानते नहीं थे, एक प्रकार का अलग जीवन जीते थे। मैंने पानी फिल्टर वाला कौन सा है क्या ये कुछ भी जानकारी नहीं थी, पर जैसे जैसे जानकारी हो के लोग शिक्षा के क्षेत्र में जानने लगे कि वाकई में शुद्ध जल पीना चाहिए, ऐसी कई प्रकार की बीमारी हो जाती थी, उससे मृत्यु हो जाती थी, पर अब लोग समझने लगे, सोचने लगे, ये सारी चीज़ें आने लगी, इसलिए अब सारे सुचारू रूप से हर इसमें कि मतलब जो जल है वो शुद्ध ही पीना चाहिए, अशुद्ध जल पीने से कई प्रकार की बीमारी, जैसे हमारे लेफ्ट सात्विक ने बताया कि हैजा होता है, जिसे टाइफाइड होता है, तो उसी प्रकार से लोग अब समाचार के माध्यम से या इस चैनलों के माध्यम से सुनते हैं, सुनकर इनको जो फायदा मिलता है वो अब पहले जैसी गलतियाँ नहीं करते हैं।
तो आप लोगों ने जाना कि हमारे देश की जो रीढ़ है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने प्रत्येक काम के लिए छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे स्तर तक, आखिरी वो इंसान जो गांव में रहता है वहां तक भी सारी सुविधाएं पहुंचाई और हमें स्वस्थ बनाने की कोशिश की है। तो हम श्री वराठे जी, सातपुते जी, साबले जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से गांव के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जल को हम कैसे बचाएं, उसका उपयोग कैसे करें, कौन सा जल पिए, तो इसके बारे में थोड़ी सी अपने संदेश के माध्यम से लोगों को के बीच में अवेयरनेस फैलाएं।
मैम बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अभी हम लोग गांव में जाते हैं या हमारे सुपरवाइजर या हमारे एम्प्लॉई गांव में जाते हैं तो उनकी यही समस्या रहती है कि लोग बाग टोटियाँ बंद नहीं करते हैं, नालियों में बहाते हैं ट्रीटेड वाटर। तो मेरी लोगों से यही यही कहना चाहूँगा कि जल को नालियों में ना बहाए और उसका सदुपयोग करें और हमेशा ट्रीटेड वाटर का ही उपयोग करें। ट्रीटेड वाटर से मतलब है कि क्या कहेंगे, उपचार युक्त जल। तो हमेशा, क्योंकि क्या है 80% जो बीमारियां है वो अनट्रीटेड वाटर पीने से होती है, मतलब जो अपन डायरेक्ट जल ले लेते हैं कुएं या हेडपम्प से उसी के कारण होती है। तो और हम लोगों ने ऐसा गांव में जब हम लोग विजिट करते हैं तो यही भी बात सामने आई है कि जो लोग उपचार वाला जल पी रहे हैं, ट्रीटेड वाटर पी रहे हैं, वो लोग कम बीमार पड़ रहे हैं, और जो कि डायरेक्ट हेडपम्प या कुएं वाला पानी पी रहे हैं तो उनको सर्दी खांसी इस टाइप की बीमारियां जल्दी हो जा रही है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप ट्रीटेड वाटर का उपयोग करें। और पुरुषोत्तम जी अगर कुछ कहना चाहें तो दो शब्द कहें।
देखिए पहले के ज़माने में क्या था कि इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, तो किसी भी सोर्स से अगर अपन वाटर को मतलब यूज करते थे या पीने में उसका इस्तेमाल करते थे तो कोई प्रॉब्लम उतनी आती नहीं थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, थोड़ा वाटर कंटामिनेटेड होने लग गया है, तो उससे क्या होता है कि अगर अपन ट्रीटमेंट वाटर ही पियेंगे तो उससे कोई बीमारी नहीं होंगी और कुछ भी ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमें प्रेफरेंस में यही कहना चाहता हूँ मैं कि जो हाँ, और कई लोगों की जो मिथ्या है, जो भ्रम है, तो उसमें कई लोग मतलब फैलाते हैं कुछ भ्रम, तो उसमें ना आए और ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी सप्लाई होता है उसका ही यूज करें।
आपने जी को संदेश देना चाहते हैं?
जो सरकार ने पहले भी जो स्कीम चालू की थी वाटर हार्वेस्टिंग वाली, जो बिल्डिंगें बनती है और वो वर्षा का जो जल है वो सीधे भूमिगत जल में जाकर इससे भी वाटर लेवल रिचार्ज होता है, और हमारे शासन द्वारा हैंडपम्प के सामने सोकपिट बनाया जाता है, वो भी अच्छी स्कीम है, ताकि वो जो पानी जो वेस्ट होता है वो अंदर भूमिगत जल में चला जाए, जिससे कि वाटर की जो पर्याप्तता वो बनी रहे हमारी, यही चाहूँगा।
तो आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे इन लोगों के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है, तो इस संदेश को ध्यान में रखते हुए हमें जल की महत्ता को समझे। क्योंकि एक बूंद जल हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए सक्षम होती है। तो एक एक बूंद जल का संचयन करके हमें रखना है, जैसा कि साबले जी ने बताया, वाटर हार्वेस्टर, जल को बचा के रखिए, भूमि में पहुंचाइए। धन्यवाद।